कहते हैं कि भारत के इतिहास में यदि राजपूताना की वीर गाथाओं का स्वर्णिम अध्याय न होता तो इसकी वैसी भव्यता न होती जैसी आज है। और ऐसे ही एक राजपूताना की अमर गाथा को सुनने जा रहे हैं हम। ये वीर गाथा है मेवाड़ केसरी महाराणा सांगा की। भारत की भूमि भले ही वर्षा की बूंदों के लिए तरसती रही हो, परंतु सत्ता सिंहासन के लिए निरंतर होते रहे युद्धों से टपकते रक्त से ये भूमि सदैव सिंचित होती रही। आन बान और शान के साथ ही सत्ता के षड्यंत्रों में रचे बसे यहाँ के वीरतापूर्ण वातावरण में राजपूतों की महिमा का भव्य दर्शन होता है। इस भूमि पर जहाँ एक ओर सतियों ने जौहर की प्रचंड ज्वालाओं में भस्म होकर भारतीय नारी के दृढ़ संकल्प और सतीत्व की नई परिभाषा लिख दी, वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता प्रिय राजपूत वीरों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण तक अर्पण कर दिए। राजस्थान के सबसे बड़े और साहसी शूर वीरों में से एक महाराणा सांगा को आज भी उनके बलिदान के लिए पूजा जाता है। मेवाड़ के पूर्व शासक एवं महाराणा प्रताप के पूर्वज राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया। उनका संघर्ष सबसे पहले अपने घर में ही शुरू हो गया जब उत्तराधिकार पाने के लिए उन्हें अपने ही भाइयों से लड़ना पड़ा। राणा के भाई ने उनकी आंख में भाल चुभो दी, लेकिन महावीर राणा सांगा एक फूटी आग के साथ भी लड़ते रहे। ऐसा अदम्य साहस था उनके अंदर। अपने जीवन काल में उन्होंने अनेक बड़े बड़े युद्ध लड़े, चाहे वो गुजरात के सुल्तान के साथ लड़ाई हो या दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष हो, वीर योद्धा राणा सांगा हर युद्ध में वीरता के साथ लड़े और विजय प्राप्त की। खानवा के भयानक युद्ध में लड़ते हुए राणा सांगा की एक आंख में तीर लगा था, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और युद्ध में डटे रहे। इस युद्ध में उन्हें कुल 80 घाव आए थे। उनकी लड़ाई में दिखी वीरता से बाबर के होश उड़ गए थे। इब्राहिम लोदी की पराजय। महाराणा सांगा को अफगानी सेना के आक्रमण की सूचना मिल गई थी तो उन्होंने तत्काल राजपूत सरदारों की बैठक बुलाई। वीर मेदनी राय भी इस बैठक में थे। महाराणा ने गंभीरता से वार्तालाप आरंभ किया। हमारे राजपूत सरदारों, एक समय था जब अजमेर के वीर राजा पृथ्वीराज चौहान ने राजपूत साम्राज्य का विस्तार किया था। उनके बाद से हिंदू शाही का निरंतर पतन हुआ है और मेवाड़ को छोड़कर किसी ने भी विदेशी शक्तियों को जवाब नहीं दिया। महाराणा बोले, दिल्ली की गद्दी पर बहुत समय से हिंदू सम्राट नहीं बैठा। हमने इन विदेशी साम्राज्यों को भारत से खदेड़ने का स्वप्न देखा है। आपके इस स्वप्न को पूरा करने के लिए हम अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। जितना भी युद्ध करना पड़े हम करेंगे, मेदनी राय ने दृढ़ता से कहा। हमें ऐसे ही संकल्प वाले वीर राजपूतों का साथ चाहिए। दिल्ली का नया नवेला अफगान सम्राट मेवाड़ को विजित करने का स्वप्न देखता आ रहा है। जो काम उसके अनुभवी और वीर पिता से ना हुआ उसे वो कल का लड़का करने की इच्छा रखता है। विडंबना यह है कि वो अपना बल आजमाने मेवाड़ की धरती पर आ रहा है। अब हम उस सुल्तान को दिखाएंगे कि सिंहों की मांद में घुसकर शिकार करने का दुस्साहस करना कितना घातक सिद्ध होता है। हमारे गुप्तचरों ने बताया है कि दिल्ली से बहुत बड़ी सेना मेवाड़ की ओर चली आ रही है, एक राजपूत सरदार ने कहा। इसे इस परिप्रेक्ष्य में ना लो सरदार पूर्ण सिंह, इसे ये कहकर समझो कि हमारी तलवारों को ज्यादा से ज्यादा रक्त पीने का अवसर मिलेगा। जितने अधिक शत्रु होंगे उतना ही शिकार का आनंद बढ़ेगा। हमारी सेनाएं तैयार हैं और हमें आज साय को ही प्रस्थान करना है, जिससे हम शत्रु दल को राजपुताने की रेत में घेर कर मार सकें। महाराणा सांगा की जय! सभी सरदारों ने समवेत जयघोष किया और अपनी अपनी तैयारी करने लगे। साय होने तक मेवाड़ की राजपूती सेना सज धज कर रणभूमि की ओर चल पड़ी। महाराणा सांगा के नेतृत्व में उस राजपूती सेना में विचित्र सा जोश था, जिससे सब दिशाएं गूंज रही थी। जब ये सेना घड़ौती सीमा पर खातौली गांव के समीप पहुंची तो इब्राहिम लोदी की सेना से उसका सामना हो गया। दोनों सेनाओं के शिविर लग गए और प्रातः होने की प्रतीक्षा की जाने लगी। दोनों खेमों में युद्ध की व्यूह रचना हो रही थी। महाराणा सांगा ने चौतरफा युद्ध की व्यूह नीति का समर्थन किया। सवेरा होने पर युद्ध का बिगुल बज उठा और दोनों ओर से सेनाएं आपस में भिड़ गईं। मगर राजपूत व्यूह ने चारों ओर से अफगानी सेना को घेर लिया और भीषण मार काट मचा दी। बीच मैदान में महाराणा सांगा और मेदिनी राय जैसे वीर योद्धा अफगानों की कठिन परीक्षा ले रहे थे। उनकी तलवारों ने जो विध्वंस मचाया उसे देखकर उनके कलेजे कांप उठे। महाराणा सांगा तो जैसे साक्षात काल रूप ही हो गए थे। उनकी तलवार से रक्त उड़ उड़ कर जा रहा था और उसी अनुपात में शत्रुओं के सिर कट कट कर उछल रहे थे। मेदिनी राय भी पीछे नहीं थे। सलूम्बर के रावत राजा रतन सिंह का कौशल भी दर्शनीय था। मेवाड़ नरेश राजा वीरमदेव भी एक मोर्चे पर अपनी तलवार की प्यास बुझा रहे थे। इस चौतरफा व्यूह ने अफगानों के भागने के भी सारे रास्ते बंद कर दिए थे। शाम ढलते ढलते दिल्ली सेना के होश फाख्ता हो गए थे और उसके सैनिक बचने के रास्ते खोजने लगे थे। ऐसे भयानक युद्ध लड़ने की उन्हें आशा भी न थी। अकस्मात एक विष बुझे तुर्क तीर ने राणा सांगा की बाई भुजा के कवच को भेद दिया और इसकी तीव्र पीड़ा से राणा तिलमिला उठे। तभी बाएं पैर में भी जंघा के निकट एक तीर आर पार हो गया। मेदिनी राय ने देखा तो तत्काल राणा सांगा को संभाला। शत्रु दल अब निश्चित पराजित हो गया था और भाग खड़े होने के रास्ते खोज रहा था। राणा सांगा के घायल होने पर उन्हें यह अवसर भी मिल गया और बुरी तरह पराजित होकर इब्राहिम लोदी अपने प्राण बचाकर भाग ही निकला। उसके भागते ही अफगानी सेना भी भाग खड़ी हुई। राजपूत विजयी हुए। महाराणा सांगा की मालवा विजय। महाराणा सांगा की जय जयकार सारे मेवाड़ में गूंज रही थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि वीर पुरुषार्थ उसके आंतरिक भावों से ही शक्ति पाता है। विजय की लालसा ने उन्हें भी इस युद्ध में बड़ी शक्ति दी। उन्होंने अपने सामंत सरदारों को विश्वास दिला दिया कि अपंगता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती और उनका रणकौशल अभी भी अद्भुत था। धौलपुर के भव्य युद्ध की विजय ने राजपूती गौरव को और भी सज्जित कर दिया था। इस युद्ध में लोदी की शर्मनाक हार के साथ ही राजपूत सेना ने उसके कई परगने भी मेवाड़ के अधीन कर दिए। महाराणा सांगा ने इस विजय का श्रेय मेदिनी राय को दिया और इब्राहिम लोदी से छीनी चंदेरी रियासत भी उन्हें पुरस्कार में दे दी। मेदिनी राय का वर्चस्व बढ़ा और यह समाचार मालवा के सुल्तान महमूद द्वितीय को मिला तो वो तिलमिला गया। अतः उसने मेदिनी राय को मिले चंदेरी प्रदेश को छीनने का निर्णय कर दिया। सन 1519 में सुल्तान महमूद द्वितीय ने मुजफ्फर शाह की सेना के साथ अपनी सेना इकट्ठी की और गागरौन पर चढ़ाई कर दी। मेदिनी राय के पुत्र भीमराज ने आक्रमण का डटकर सामना किया और पीछे से मेदिनी राय भी आ गए। दोनों पिता पुत्र बड़ी वीरता से पुरस्कार में मिली अपनी रियासतों की रक्षा में अपने प्राणों की बाजी भी लगाने को आतुर थे। इस युद्ध की सूचना महाराणा सांगा को मिली तो उन्होंने तत्काल अपनी सेना ले जाकर मेदिनी राय को सहायता दी। जब राणा सांगा युद्ध भूमि में आ गए तो मेदिनी राय का साहस तो अपने आप ही दोगुना हो जाने वाला था। अब उन्हें कोई चिंता नहीं रह गई थी। राणा सांगा की उपस्थिति और उनके युद्धरत रहने से तो एक एक राजपूत सैनिक में प्रेरणा और उत्साह बढ़ता था। शीघ्र ही सुल्तान महमूद को पता चल गया कि उसने क्रोध में गलत निर्णय ले लिया था। अब स्थिति यह बन गई थी कि कहां तो महमूद जीत के लिए आया था और कहां अब उसे अपनी जान बचाने की चिंता सताने लगी। उसका सेनापति आसफ खां बुरी तरह घायल हो गया था और स्वयं उसकी दशा भी चिंताजनक थी। मैदान छोड़ दो, सुल्तान महमूद को कहना ही पड़ा। इस तरह तत्काल ही बची खुची सेना बच निकलने के रास्ते खोजने लगी और सुल्तान महमूद भी इसी चक्कर में था। लेकिन वो उस समय सन्न रह गया जब राणा सांगा की तलवार ने उसकी गर्दन को स्पर्श कर लिया था। सुल्तान महमूद सूखे पत्ते की भांति कांप उठा। उसकी आंखों में याचना के भाव उतर गए। सुल्तान को बंदी बना लिया गया। मालवा पर राणा सांगा का अधिकार हो गया। युद्ध में सुल्तान महमूद बुरी तरह जख्मी हो गया था और हार के साथ जख्मों की पीड़ा से वो बार बार बेहोश होने जैसी स्थिति में चला जाता था। महाराणा ने उसकी ये दीन दशा देखी तो द्रवित हो उठी। भले ही वो शत्रु था लेकिन था तो इंसान ही। महाराणा मानवता के प्रबल पक्षधर थे और इसे वैश्विक धर्म के रूप में देखते थे। इसलिए उन्होंने अपने राज वैद्यों से सुल्तान का समुचित उपचार करने को कहा। महमूद को तो अपने जीवन की